ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി. आपने यहां अंदर आते ही बाबा के गीतों में से एक विशेष गीत सुना. क्या था? ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप मैं आत्मा हूं. तो आपको टॉपिक तो अपने आप ही मिल गया. टॉपिक पर बोलने की जरूरत है? सेल्फ रियलाइजेशन तो सॉन्ग में ही आ गई. जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है ना, तो उससे भी तो ये गीत जो बजाने वाले हैं ना, ये बहुत होशियार हैं. पहले से ही बता देते हैं कि अभी कौन सा सीन आने वाला है. टॉपिक को अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है. हमेशा ऐसे होता है. तो परंतु रियलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन. अब ये तो अज्ञानी भी जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं. ये कभी नहीं सुना शरीर ने आत्मा छोड़ी, आत्मा ने शरीर छोड़ा. तो जिसने लिया उसने छोड़ा ना. आत्मा ने शरीर लिया तो आत्मा ने शरीर छोड़ा. तो मनुष्यों को मरने का डर क्यों है, जबकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा चैतन्य है, अजर अमर है. फिर भी फलाना मर गया यही कहा ना, आत्मा मर गई है तो कहा नहीं. परंतु सारी उम्र ये रियलाइज नहीं किया कि मैं आत्मा कौन हूं. आत्मा तो हूं पर मुझे आत्मा की चैतन्यता में कौन सी शक्ति समाई है. तो आत्मा जैसे परमात्मा बीज रूप है, आत्मा भी चैतन्य बीज है. भक्ति में भी कहते हैं शरीर वृक्ष के समान है, बायोलॉजी में भी कहते हैं वृक्ष के समान है. परंतु एक्चुअली एक्सपेंशन आत्मा की वैल्यू शरीर बगैर तो है नहीं. बीज अगर एक बैग में 5 साल 10 साल तक पड़ा रहे, 5 किलो बीज समझो मिसाल के तौर पर, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? उसमें से सिर्फ 10 बीज आप डाल दो धरती में, 10 साल में वो पेड़ बन के फल देने वाला, फूल देने वाला, और फ्यूचर वो एक फल खा भी लिया फिर भी फ्यूचर अनेक पेड़ उगाने वाला. तो जब आत्मा परम धाम में चली गई, हम ये पूछते हैं उनसे रियलाइजेशन सेल्फ वालों से जो मानते हैं कि हम आत्मा हैं, तो ये रियलाइजेशन है कि मुझे आत्मा, मैं आई यहां क्यों, मेरा यहां आने का पर्पस क्या है। आप कहां जाते हो, तो कोई चीज खरीदने जाते हो, किसी लक्ष्य से जाते हो, कोई प्रोग्राम में जाते हो, कुछ देखने जाते हो, यानी हर कदम कुछ महत्व को सामने रख के किया जाता है। तो मैं आत्मा अगर परमात्मा में समाई हुई थी तो क्या वो मैं सुखदाई स्टेज नहीं थी, या ब्रह्मलोक में मैं थी तो सेटिस्फाई नहीं थी, जो यहां आते गए आबादी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि बहुतों का ये क्वेश्चन होता है, भले आत्मा समझा, पर एक्चुअली आत्मा को स्वाभाविक रूप से जो उसकी वैल्यू है वो यहां आने से पता चलती है, पर क्योंकि अपनी वैल्यू को यूज नहीं कर रहे और अथवा पहचान नहीं रहे, क्योंकि सिंपल बात है, तो पहला लेसन है ना। अभी आप सब तो टीचर्स बैठे हो, पुराने बाबा के बच्चे हो, अभी आपको पहला लेसन थोड़ा चाहिए, पर टॉपिक सेल्फ रियलाइजेशन दिया है तो बेशक उसी हिसाब से बोलना होगा। आपको तो मालूम है आप आत्मा हो, मालूम होते हुए भी बाबा हमको रोज क्यों कहते हैं सोल कॉन्शियस हो, सोल कॉन्शियस होके बैठो, मेहनत सारी इसमें ही है। तो क्या मेहनत है, मैं तो आत्मा हूं ही ना, फिर भी मेहनत क्यों है? क्योंकि जो आत्मा को बेशक प्रकृति चाहिए, जैसे बीज को मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, वो उगेगा फल देगा फिर और फल निकलेगा। परमात्मा को भी शरीर चाहिए, तो ऐसा है कि शरीर की वैल्यू नहीं है, पर शरीर भान में आत्मा की वैल्यू को हम छिपा देते हैं, छिप जाती है। शरीर का भान, फिर देह का अभिमान, फिर अभिमान आया तो मान अपमान का झूला झूलना शुरू किया, फिर अहम भाव आया तो वहम दूसरे में पैदा होना शुरू हुआ, रहम खत्म हो गया। आत्मा का जो असली गुण है, अपने पर रहम करना और दूसरे पर रहम करना, अपने पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आत्मा को ये भूल गया कि मुझे आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज जो हैं, वो मैं अगर यूज नहीं कर रहा हूं, कोई चीज को आप यूज नहीं करते हो तो धीरे धीरे भूल जाएगा ना। घर में पड़ी हुई चीज भी अगर बहुत समय तक यूज नहीं की तो जरूरत पर ढूंढनी पड़ती है, और बहुत संभाल के रखी तो भी भूल जाती है। तो क्योंकि सोल कॉन्शियस नहीं है, ये रियलाइजेशन नहीं है कि जैसे बॉडी कॉन्शियस में मेरे को मां बाप ने अभ्यास कराया, तू लड़की है तू लड़का है, अगर वो मेरे को कहते तू मेरा बेटा है तो मैं अपने आप को बेटा समझती हूँ, मेरे को बार बार याद कराया बिटिया बिटिया बिटिया, गुड़िया गुड़िया, शरी बे बेटी क्या किस है, लड़की हो तू लड़की हो। तो हमको शरीर का भान पक्का कराने के लिए, हमारे स्वरूप को पक्का कराया, बार बार शीशा दिखाया, बार बार नाम पक्का कराया, हमारे माँ बाप ने हमको देह अभिमानी कैसे बनाया, जो तरीका हमारे माँ बाप ने लिया, हमारे दादा दादी ने लिया, परदादा परदादी ने लिया देह अभिमानी बनाने का, परमपिता परमात्मा को भी माता पिता टीचर बन करके फिर हमको वापस सीढ़ी जो उल्टी चढ़ गए थे वो उल्टी चला रहे हैं। लिफ्ट तो वही है, उतर गए थे। बाबा ने कहा बार बार सीढ़ी को अच्छी तरह से समझो, उतर गए थे अपने आत्मिक स्वरूप से, भूल गए थे। पर अभी याद भी आया तो अभ्यास नहीं कर रहे। नाम पक्का कराने के लिए कितने बारी छोटे बच्चे को, जो भी कोई घर में आता है, कितने बारी कहते बेटे तुम्हारे 10 व्यक्ति घर में आएंगे, रिश्तेदार आएंगे या कोई वैसे भी पूछेगा तो पहली बात नाम क्या है। बेचारा बच्चा थक जाता है, आखिर नहीं बोलता, कहते अरे तुम अपना नाम भी भूल गए। इतना पक्का कराते हैं, शक्ल इतनी पक्की हो जाती है जो 1000 का फोटो खींच है, फोटोग्राफ खींचा, चलो हम कहा किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में थे, वहां फोटो खींचा, 1000-2000 बैठे थे, आपको अपना फोटो पर फौरन नजर जाती है, मैं कहा बैठी हूं, रूप याद हो गया ना। वो कितना नेचुरल हो गया। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि मुझे नेचुरल मैं सोल हूं और मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शुद्ध आत्मा हूं क्योंकि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं। यह स्वमान मुझे कितना समय याद है जो देह का भान कम हो जावे। देह का भान मैंने जैसे पक्का किया, ऐसे अभी ये रियलाइज करना है कि मैं कितने सारा दिन में, चाहे यहां बैठे हुए हैं ना, कहां पर भी हैं, एक ऑनेस्टी से हम अपने आप को चेक करें, मैं सोल कॉन्शियस कितने मिनट रही सारा दिन, नेचुरल सोल कॉन्शियस रही या योग में बैठी तो सोल कॉन्शियस होके बैठी, और योग में बैठी तो भी मन इधर उधर जा रहा है, काम याद आ रहा है, कुछ रॉन्ग हो गया वो याद आ रहा है, पश्चाताप हो रहा है, कुछ ड्यूटी मिली हुई है वो खींच रही है। तो मैं अपने जो आइडेंटिटी है शुद्ध और शांत स्वरूप आत्मा हूं, वो मेरे श्वास में समा गई है। बाबा ने कहा ना संकल्प और श्वास, असली सेवा मनसा सेवा संकल्प और श्वास से है। तो मेरे संकल्प में यानी मन के की शक्ति संकल्प है ना। चलो अभी विकल्प बंद हो गए पर व्यर्थ संकल्प कितना चलता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन में स्व चिंतन कितना है ये अपनी चेकिंग, पर चिंतन कितना है, कर्म इंद्रियों से मैं कोई काम कर रही हूं सबको नजर आ रहा है पर मन मेरा क्या कर रहा है, उसका फोटो दूसरे के पास नहीं है। मन दर्पण जो है वो मेरा मन किस संकल्प का स्वरूप बना हुआ है। तो रियलाइजेशन ये कि जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है और ओरिजिनल गुण है, क्योंकि मैं चेतन आत्मा हूं तो वो चैतन्य है या सोया हुआ है या अनकॉन्शियस है। तभी सोल कॉन्शियस, बाबा कहते सोल कॉन्शियस सोल कॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस हूं तो कॉन्शियस में लाना चाहते हैं ना। थोड़ा एक एक शब्द की गहराई में जाओ। अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाने के लिए डॉक्टर ध्यान में लाते हैं। तो मेरा डॉक्टर सा बाबा सर्जन रोज मुझे सोल कॉन्शियस होने की डोज देता है, इंजेक्शन लगाता है। तो जरूर बार बार मैं अनकॉन्शियस हो जाती हूँ वो सोल कॉन्शियस, कोई भी मुरली खाली नहीं है। कभी कभी तो 25 बार 30 बार 40 बार भी आपने गिनती किया होगा। तो कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? कॉन्शियस का मतलब है कि आप अपने आप को, जो आपकी विशेषता है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। कोई व्यक्ति जब अनकॉन्शियस होता है तो कहते हैं पहचानता नहीं, अनकॉन्शियस हो गया, सुनता नहीं, सुनाई नहीं पड़ता, अनकॉन्शियस है, बोल नहीं सकता, अनकॉन्शियस है। अपना ही रिश्तेदार है, अंदर थोड़ा थोड़ा फील करता है पर पहचानता नहीं। यानी अनकॉन्शियस वो जो आत्मा ने अपनी, जो हमारी, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं कौन हूं, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, ये निश्चय और नशा और उसका अनुभव मुझे कितनी देर है सारे दिन में। निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती, इच्छा तो है मैं शांत रहूं, पर बुद्धि में मेरे पास अपने आप पर भी विश्वास नहीं, दूसरे पर भी विश्वास नहीं, पर चिंतन और दोष दर्शन। तो मेरी जो बुद्धि का नेत्र है वो गुणग्राही है या फॉरेन क्रिटिकल है, करेक्शन करने वाला है अथवा कमी को देखने वाला है, नोट करके व्यवहार में वाणी में लाने वाला है। तो अपनी मुझ आत्मा की जो पहली तो जो चेतनता है, चेतन क्यों हूं, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार सही, तो ब्रेन की बात नहीं है, ब्रेन या हार्ट उनके पास चेतनता नहीं, वो तो जड़ चीज है ना। हाथ पैर जो है वो चेतन है क्या? उसको तो पता भी नहीं है। हाथ में मानो मेरे को चोट लगी, सिर में दर्द है, मैंने कभी कहा मैं सिर दर्द हूं, मैं पेट दर्द हूं, मैं पैर टूट गया हूं? यानी बॉडी के कोई भी ऑर्गन को तो कॉन्शियस ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है, और मैं बॉडी कॉन्शियस होने के कारण जहां फीलिंग नहीं है वहां मेरा सारा फोकस है। तो मुझे आत्मा की जो गुण और चेतनता है उसका जो डायरेक्शन फोकस चेंज हो गया, तो नेचुरली क्या है कि ओरिजिनल आत्मा की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। इसलिए बार बार पहला मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा में चेतनता है, और चैतन्यता का मतलब मेरे परमात्मा की संतान होने के कारण मेरे संकल्प में शुद्धि है, पर मैं जब देह अभिमानी हूं तो मैं उसके कलर में इतनी कलर हो गई। जैसे शुद्ध पानी है, वो पानी स्वच्छ था, परंतु मिसाल के तौर पर ये पानी है, कैसे हम बॉडी कॉन्शियस बने कैसे? अब उसने सोल कॉन्शियस बनने के लिए क्यों बाबा पुरुषार्थ कराते, रियलाइज कराते, मिक्स क्या हो गया तुम्हारे में? अब ये मिसाल के तौर पर पानी का गिलास रखा है, एक कॉमन एग्जांपल मैं यूज करती हूं। अब ये पानी है, पीऊंगी, मुझे मालूम है हेल्दी है, स्वच्छ है। दूसरी खूबी इसमें क्या है, मैं उठाऊं इसको, ट्रांसपेरेंट है, मेरे को अपना ही दर्पण इसमें नजर आएगा, क्लीन है। तीसरा विशेषता क्या है, मैं अगर थोड़ा इसको ऊपर से डालूंगी, इसमें फ्लो है। चौथी विशेषता है कि मेरे मैले कपड़े को साफ करता है। पांचवी विशेषता है, ये ठंडा है, शीतल है। बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो ऐसे मुझ आत्मा में आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है, तो मेरी आत्मा में पहली विशेषता शुद्धि है। पर मिट्टी मिल गई, अभी इसी पानी में मिट्टी मिल गई, हेल्दी रखेगी मुझे। तो जो मेरे गुण थे वो अवगुण की एनर्जी में चेंज हो गए। उसकी मिसाल बता रही हूं ये कि मैं पवित्र शुद्ध भी थी और प्रेम स्वरूप भी थी। क्रोध क्यों आया मुझे? मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूं ना, क्रोध कहां से आ गया? भाई आग में पानी डालो, आग पर पानी डालो, आग बुझेगी ना। पानी में आग डालो तो भी आग बुझेगी। तो मैं आत्मा जो शांत स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, ये सुना ना, शुद्ध स्वरूप मैं आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूं। अब इसी दो शब्दों की रियलाइजेशन, तो मेरी पवित्रता कैसे गुम हो गई? और मेरे में जो प्रेम था, वो प्रेम तो गुण है ना, तो जो मेरी शांति थी वो शांति अशांति कैसे आ गई? पानी ने अपना गुण क्यों छोड़ दिया? तो मुझ आत्मा में प्रेम था, अब वो प्रेम मोह में बदल गया। मोह विकार है। क्यों मोह में? मोह चिंता देता है, मोह डर पैदा करता है, मोह परेशान करता है, मोह लोभ, बच्चों की पालना करनी है इसलिए कुछ न कुछ कर्म में, सत्य कर्म में असत कर्म में ला देता है। मोह वश मैं दूसरे को गुस्सा भी करती हूं। तो अभी हमारे पास ये जो हमारे गुण थे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो रॉन्ग एनर्जी हो गई, चेंज हो गई, अब उसको रिवर्स कैसे करें? ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, वो खत्म कैसे हो गया? कारण तो एक ही है। तो एक ही मिसाल के तौर पर, अभी जैसे ही यही पानी है, पहला गुण। अभी इसमें एक क्लीन है, थोड़ी सी मिट्टी मिलाओ हेल्दी रहेगा, पीऊं तो बीमार हो जाऊंगी ना। और थोड़ी मिट्टी मिलाई, कपड़े साफ करेगा या दाग लगा देगा। और मिट्टी मिलाई, ट्रांसपेरेंट रहेगा नहीं। और मिट्टी मिलाई, फ्लो रहेगा। बहुत धीरे 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 चलेगा। और मिट्टी मिलाई, क्या बन गया? नाम ही बदल गया। क्या बन गया? किचड़ बन गया। वो जो प्रेम आत्मा का गुण था वो मोह बन गया मिट्टी मिलते मिलते। तो शरीर क्या है? मिट्टी में मिट्टी मिली, यही कहते हैं ना, मिट्टी का पुतला है ना। तो हमारा सारा दिन जो बॉडी कॉन्शियस है वो सोल कॉन्शियस की एनर्जी को इतना वीक कर देती, इतना इन्फ्लुएंस कर देती। तो हमारा अब सोल कॉन्शियस से परमात्मा के साथ कनेक्शन जुटेगा ना। मैग्नेट में एनर्जी है कि वो सुई को खींचता है, लोहा लोहे को खींचता है। पर अगर कोई बीच में चीज आ गई, पेपर आ गया, कपड़ा आ गया, खींचेगा क्या? तो ऐसे ही जो आत्मा जो एकदम शुद्ध तो थी, अशुद्ध हो गई देह के भान से, आकर्षण आने लगा दूसरों में। वो देह तथा देह का आकर्षण बंधन बनने लगा, पराधीन करने लगा दूसरे का आकर्षण। तो क्या हुआ? पराधीन स्वप्न ही सुख नहीं, बंधन में आ गया तो सुखी कैसे होंगे? आगे बढ़ना रुक जाता है। बंधन अगर कोई भरे रस्सी लंबी भी हो पर बंधी हुई है किसी खूंटे से, तो जितने तक रस्सी जा सकती उतनी जाएगी, पीछे खींचेगी वापस। तो हम योग लगाते हैं फिर पीछे वापस आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो बंधन देह भान का बंधन हमको बांधता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं मत जीते जी मर जाओ। मर गया तो बंधन नहीं रहा, संबंध ही खत्म हो गया। पर जीते जी मेरा संबंध और बंधन खत्म हो गए, उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए और ज्ञान चाहिए। तो पहले तो रियलाइजेशन चाहिए कि बंधा हुआ हूं, क्योंकि ये रियलाइजेशन नहीं है कि मोह जो है वो मुझे दुख देता। समझते प्रेम है ना, अब बच्चे हैं मोह तो जरूर होगा ना। हमारे अपनी बुद्धि को यानी वो कमी को एक आवश्यकता समझ लिया, अथवा उसके प्रभाव को रियलाइज नहीं किया कि हमारे आइडेंटिटी को ही चेंज कर रहे हैं। तो मैं जो सदा शुद्ध आत्मा, हर एक के लिए मेरे हृदय में प्रेम रहे, वो नफरत क्यों आई, रिजेक्शन क्यों हुआ? वो तो मेरे शुभ चिंतन को ही बंद कर देगा। शुभ भावना शुभ कामना कहां से रहेगी? मन की जो गुण है शुभ भावना शुभ कामना, नफरत आई ईर्ष्या आई, वो आग अंदर जलने लगी, पानी गर्म हो गया, रिजेक्शन ईर्ष्या द्वेष वैर बदला लेने की भावना, वो आग क्यों आ गई? वो पानी जो ठंडा था वो गर्म क्यों हो गया, क्या कारण था, क्या कारण था? आप ठंडा पानी है, आपने चाय बनाई, उबलने लगा पानी और पतीले को हाथ लगाया, हाथ आपका जल गया, वो आग कैसे बन गया, पानी जलाने वाला कैसे बन गया, क्या कारण है? बीच में बर्तन आ गया, पानी को सीधा आग पर डाला तो बुझा, पानी आग को पानी में डाला तो बुझा, पर बीच में बर्तन आया, पानी ने फौरन को ले लिया। तो ये एक रियलाइजेशन कि सचमुच मेरी बुद्धि में ये 100% हो कि अगर बीच में देह का भान, देह का अभिमान, देह का अहंकार आया तो विकार का द्वार खुल गया, ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि दूसरे का प्रभाव पावरफुल है। रावण जिसको बाबा बोलते हैं, राम राज था, रावण राज कैसे आ गया, वो प्रभाव पड़ा ना। कोई लड़ाई थोड़े ही की त्रेता वालों ने, जो चंद्रवंशी उन्होंने राज गवाया, रावण आ गया, रावण राज आ गया, रामचंद्र राम राजा, राम प्रजा राम शाहकार है, बसे नगरी जी ये दाता धर्म का उपकार है। वो स्वधर्म में टिके हुए पर धर्म में कैसे आ गए, ये प्रकृति का प्रभाव। वहां जो देह का भान नहीं था, देह का ज्ञान नहीं था, तो इतनी मेरी मुझे रियलाइजेशन हो कि बार बार मुझे ये नेचुरल मेरा संकल्प और स्वरूप और श्वास एक है, इस लेवल पर मैं पहुंची हूं। संकल्प श्वास, जब संकल्प और श्वास है तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस में आएगा। श्वास है तो श्वास से वाइब्रेशन बनता, वायुमंडल बनता है। भट्टी करते हैं, मिल के बैठते हैं, वायुमंडल बनता है। योग तो अकेले भी लगा सकते हैं, ये भट्टियां क्यों करते हैं भाई? आग तो एक लकड़ी में भी आग है ना, जल रही है तो आग नजर आ रही है, महसूस भी हो रहा है। दो लकड़ी डाली टुकड़े, थोड़ी और मच गई आग। चार लकड़ियों के टुकड़े डाले और भी मच गई आग, बढ़ गई। अब वो अगर 50 टुकड़े लकड़ियों के जल रहे हैं, उसमें एक गिली लकड़ी भी डाल दो, उसको भी आग लगेगी ना। तो भट्टी क्यों कर रहे हैं कि इसमें कोई गिली लकड़ी भी आ गई है ना। कोई जिसका योग नहीं भी लगता है, अपने आप से परेशान है, सिर्फ वातावरण में आता है, कहते हैं बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, पहले बार अच्छा लगा। वो जो आत्मा की इच्छा थी उसको अच्छा लगा, क्योंकि उसको अपने गुण की, वो जो गिल्लापन था वो तो भूल गया, उस बाकियों की अग्नि ने उसको भी अग्नि बना दिया। तो ये भी महत्व है कि हम इकट्ठे योग करें, भट्टी करें, ताकि हम एक दो को सहयोग देवे। भले हमारा बर्तन बीच में है, पर हमारा बर्तन, वो बर्तन लाइट का स्वरूप, हमेशा शीतल मन, ये बार के बर्तन के बजाय बुद्धि का और मन का बर्तन कॉन्शियस ज्यादा हो तो रियलाइजेशन। क्या है कि ये रियलाइज हो बराबर पुराने संस्कारों का बंधन है, संस्कार बन गया शरीर भान का, संस्कार बन गया अभिमान का, संस्कार व्यवहार में आया तो व्यवहार में गुण ज्यादा यूज कर रही हूं या अवगुण ज्यादा यूज होते आया जन्म जन्मांतर से। तो वो देह के भान क्यों आत्माओं को संग लगाते हैं, द्वापर में क्या हुआ, अचानक परिवर्तन क्यों हुआ, पुजारी से पूज्य क्यों बन गए, क्योंकि जो नई आत्माएं ऊपर से उतरी द्वापर में वो सोल कॉन्शियस भले सोल थी पर सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस से पवित्र नहीं थी। आत्माएं जो पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं वो देवता धर्म की आत्माएं थी और उन्होंने श्रेष्ठ कर्म का फल सतयुग त्रेता में प्रलब्ध पाई, कंज्यूम कर अपने पुरुषार्थ की प्रलब्ध मिल गई, पूरी हुई। अब वो जो ऊपर वाली आत्मा आई भले नवी आई है परंतु पवित्रता की शक्ति से नहीं उतरी है, प्रकृति के आकर्षण से उतरी है, क्योंकि आत्मा समय उसको धरती खींचती है, उसकी अपनी वैल्यू को, कमजोर आत्मा जितनी जितनी कमजोर उतनी पीछे आएगी, जितनी जितनी पावरफुल आत्मा पहले आती है। तो कौन सी पावर, पवित्रता ही पावर है, पवित्रता शक्ति है, पवित्रता सुंदरता है, पवित्रता दिव्यता है, पवित्रता स्वमान है, पवित्रता का ही महत्व है। तो योग बल से क्यों क्यों मुझे योग लगाना है, मैं तो आत्मा हूं। पर याद करो तो बंधन से जो संस्कार बहुत समय का पड़ गया विकारों को यूज करने का, उसके बदले अभी कर जो गुण है उनको यूज करना शुरू करें। तो इसलिए बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्माओं के गुण कौन से है, पुरुषार्थ क्या करना है, पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ में स्थित होना है ना, मैं आत्मा पुरुष हूं ये प्रकृति है, मैं प्रकृति का पुतला नहीं हूं, ये प्रकृति और पुरुष का खेल है, मैं इस कर्म क्षेत्र पर खेल करने के लिए प्रकृति का आधार लेके आई हूं पर प्रकृति नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप को ये प्रकृति के प्रभाव में आ गई तो इस प्रकृति में अभी पांचों विकार समाये हुए हैं, क्योंकि हर एक के श्वास में, संकल्प में, व्यवहार में, जैसे आजकल वायुमंडल बहुत खराब हो गया है, एनवायरमेंट खराब हो गया है ना, एनवायरमेंट पर अंदर का एनवायरमेंट खराब हो गया ना, हमने बाहर का एनवायरमेंट के लिए प्रदूषण को ठीक कर रहे हैं पर अंदर का प्रदूषण जो आ गया, तो फिर से अपने आप को ये रियलाइजेशन कि मेरे आत्मा के बुद्धि में मुझे ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए और बाबा के साथ संबंध चाहिए जो शक्ति मिले, तो पहली बात है जो बंधन है वो खत्म हो, देह का बंधन। बाबा ने कहा अव्यक्त मुरली लास्ट्री, देह का बंधन, संबंध का बंधन, समाज का बंधन, संस्कारों का बंधन, अब वो दिखाई तो नहीं पड़ रहे पर उन्हीं के आधार पर हम कर्म कर रहे हैं ना। तो पहली रियलाइजेशन है कि जो गॉडली गुण है, डिवाइन गुण है, वो मेरा नेचुरल पैतृक संपत्ति है, ईश्वरीय गुण। तो मैं जैसे लौकिक प्रॉपर्टी को अधिकार से यूज करता हूं, ऐसे मैं ये जो अलौकिक प्रॉपर्टी है उतने नशे से, उतने निश्चय से, उसने अधिकार से यूज करता हूं। बालक सो मालक बनकर के यूज करता हूं, या कर नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे उसकी स्मृति भी नहीं है। स्मृति बाबा दिलाता भी है तो इतना बीच का देह का भान का प्रभाव इतना ज्यादा है, वो बर्तन बीच में इतना मोटा है जो ठंडा होने में भी टाइम लगाता है। बड़ा बर्तन पक्का हो ना, वो इतना इतना पक्का हो गया जो उतार के भी रखा है तो भी ठंडा होने में टाइम लगा रहे, तो जब तक ठंडा हुए मैंने फिर आग पर रख दिया। तो बार बार ये स्मृति, इसलिए योग चाहिए। तो शिव बाबा को क्यों याद करें? मुक्ति धाम में जाना है तो किससे मुक्त होना है? ये जो पांच विकार, पांच तत्वों में शरीर, शरीर तो चाहिए ही चाहिए मुझे ना, शरीर के द्वारा ही तो कर्म करूंगी। पर शरीर में जो बाबा कहते हैं प्रकृति जीत बनो, प्रकृति जीत बनो, तो शरीर के भान के कारण, प्रकृति के वातावरण के कारण हमारे में नेचुरल विकार आ गए। धरती है, पांच तत्व है ना, तो पांच तत्व का ये शरीर है, उसका प्रभाव, पानी और आग की बात बताया फिर से, प्रभाव कितना फर्क है। तो अभी आप देखो प्रकृति, पहली शरीर, शरीर सबसे बड़ी बात, देहभान, देहभान ये मिट्टी। अब धरती है, शरीर तो पांच तत्वों का बना है ना, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व का बना शरीर। ये तो भक्ति में भी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व का बना शरीर, ये बोलते हैं भक्ति मार्ग में। परंतु उस तत्वों में अब वो जो प्रकृति सतो प्रधान थी, सतयुग वाली, उस प्रकृति को का महत्व इतना कि संपत्ति अपने आप ही थी, धरती में से अपने आप ही हीरे मोती मिलते थे, वायुमंडल शुद्ध था, देह भान नहीं था, आकर्षण नहीं था एक दो के प्रति, पर स्नेह और सम्मान था। तो अब ये देह क्या, प्रकृति का सब मतलब डिटैच होने का मतलब, प्रभाव से परे होने का मतलब, तो मैं जितना जितना शरीर भान से न्यारा हो करके रहूंगी तो मेरा आकर्षण, मेरे से किसी को ऐसी अट्रैक्शन नहीं होगी जो बंधन बांधे, रिस्पेक्ट वाली होगी पर विकार की दृष्टि वाली नहीं होगी। पर देह भान वाला कोई लड़की है या लड़का है, एक दो को अट्रैक्ट करते हैं प्रकृति के हिसाब से। तो धरती का गुण क्या है? ग्रेविटी। तो जितना जितना मैं देह के भान में रही तो मेरा आकर्षण दूसरे में जाएगा। पहला तत्व, आत्मिक स्वरूप के पांच गुण तो याद रखने हैं, सात गुण, पर प्रकृति के पांच गुण जो हैं वो मुझे प्रभावित कर रहे हैं, जो मुझे बांधते हैं, इस पर भी ध्यान रखना है। अब प्रकृति में आकर्षण है, धरती में आकर्षण है, मैं यहां से कोई चीज उठाऊं, अब ये चाहे पत्थर की है चाहे स्टील की है, जैसे ही छोड़ूंगी गिरेगा नीचे, कितना भी ऊपर रखू थोड़ा ही छूटा गिरा नीचे, किसने खींचा? धरती ने खींचा, क्योंकि उसका गुण आकर्षण है, ग्रेविटी है, दूसरे शब्दों में आकर्षण बांधता है फिर। अच्छा, दूसरा है पानी। तो धरती के भान में देह का आकर्षण है, तो मेरा अटेंशन देह में गया तो आत्मिक का अटेंशन कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा ना। इसलिए मैं देह से न्यारी आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। वो एक्वेंट्री करते हैं ना, तो ये शब्द बोलते हैं, पर स्वरूप बनने के लिए बोला ना। गुण को इमर्ज करके अवगुण खत्म करेंगे ना, लाइट को जगाएंगे तो अंधेरा जागेगा ना, अंधेरा भागेगा ना। फाइट करके नहीं, लाइट नेवर फाइट्स विद द डार्कनेस। सिर्फ अपने गुण को इमर्ज करे अवगुण खत्म होगा। पर अभी हम आत्मा स्वरूप जो न्यारी है, ब्रह्मलोक की वासी है, बंधन मुक्त ओरिजिनली, उसके स्वरूप में ही कम, स्मृति कम है। ज्ञान मिला पर स्मृति स्वरूप बनी। जो गुम हो गई थी स्मृति, स्मृति लब्धा नष्ट मोहा, वो मोह इतना देह भान में हो गया तो मुझे मालूम ही नहीं मैं प्रेम के नाम से मोह को चला रही हूं। नाम का, नाम से प्रेम, मेरे पोजीशन से प्रेम, आकर्षण है ना। तो पहली बात, धरती में आकर्षण है, ग्रेविटी है, वो मुझे ऊपर नहीं उठने देती। दूसरा विकार, दूसरी चीज है पानी और ब्लड बॉडी में। तो जहां ब्लड कनेक्शन है वहां मोह, वहां अंदर दुख होगा, मोह होगा। किसी और का बच्चा हॉस्पिटल में है, आप मदद करेंगे पर दुखी नहीं होंगे। पर आपका बच्चा, आपको चिंता होगी, दुख होगा। तो जहां मोह है वहां ऑटोमेटिकली इमोशनल स्टेज बन जाती है। अभी आपस में जो अट्रैक्शन हुई और थोड़ा कनेक्शन जोड़ने का इमोशनल मोह का विचार, पानी ने, ब्लड कनेक्शन ने कनेक्शन खींचा, तो कहेंगे लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। चलो, दो दोस्तों ने, दो आत्माओं ने शरीर द्वारा हम ज्ञान मंथन करेंगे ना, आपस में मिल करके बैठेंगे। अच्छा दोस्त है ना, चलो चलते हैं, कप ऑफ टी भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे, प्लान भी बनाएंगे। वो कप ऑफ टी पीते पीते कपटी बन गए कपटी बन गए। और माँ बाप को भी झूठ बोलेंगे, देर हो गई थी, काम पर बहुत काम था, जॉब पर लेट हो गया, ट्रेन लेट हो गई, चिंता नहीं करो क्योंकि काम मेरे को ज्यादा करके आना पड़ता है। छल कपट आ गया, झूठ आ गया, कहां वो मोह खींच गया अंदर प्रकृति के आकर्षण ने, व्यक्ति के आकर्षण ने, वस्तु के आकर्षण। फिर आया लोभ। अब वायुमंडल में लोभ समाया है, धरती में आकर्षण समाया है, ब्लड कनेक्शन पानी, मेजोरिटी तो 80% तो पानी ही है ना, ब्लड भी तो पानी है, मोह समाया है। इसलिए मैं, मेरा खून का रिश्ता है ना, खून का रिश्ता था ना, बेटा मेरा था ना, हस्बैंड मेरा था ना, बच्चा तो मेरा ही था ना वो तो होएगा ही सही ना। हमने उसको ऐसा स्वीकार कर लिया बुद्धि में, विकार को अपना संस्कार बना दिया। अच्छा आया फिर रही, बाबा कहते हैं डिटैच रहो, आकर्षण से प्रले रहो, लोभ वृत्ति नहीं रखो। ऐसे नहीं देखा कल परसों ही था, चीज देखी तो खा ली, चोरी कर ली। अभी वो लोभ क्या है, वायुमंडल में लोभ समाया, हवा में लोभ समाया है। आप बाहर से आए, आप पेट भरा हुआ है, घर आए समोसे तले हुए हैं, चिप्स तल रहे, खुशबू आ रही है किसी चीज की, भूख तो नहीं है, चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ। वो मैंने प्लेट भर के एक दो खाई, चा इतना भी नहीं सोचा और खाने वाले बैठे। अच्छा मेरे पास घर में चीज रखी है, मैं खरीदने बाजार में गई, पड़ा एक खरीदो तीन फ्री, बाई वन टू फ्री। अब चाहिए नहीं मुझे, पर मैंने तीन खरीद के ले आई घर में। लोभ की वृत्ति या जो है, मैंने देखा दूसरे का मान शान क्यों है, इसका इसका कार, इसका बंगला, इसकी पोजीशन, वो वायुमंडल में नाम मान शान किस आधार पर है। तो मेरा भी ध्यान फिर उन जैसा बनने का, वायुमंडल में मेरा नाम फैलना, वो उसमें जो है लोभ वृत्ति, सूक्ष्म या स्थूल, चाहे नाम का लोभ, चाहे पोजीशन का लोभ, चाहे मेरी विशेषताओं को महत्व मिले, उसकी इच्छा, इच्छा जागृत होती है, अच्छा नहीं बनने देती। अच्छा फिर आई अग्नि, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वैर विरोध जो अंदर जलाती है, इसलिए क्रोध और काम को अग्नि कहा जाता है। तो जितना जितना मैं प्रकृति के भान में हूं, तो मेरी शरीर की आयु, बच्चा हूं तो देह का भान नहीं है, तो मेरे हृदय में महात्मा जैसे संस्कार है। जो जो उम्र मेरी बड़ी होती जाती है, यंग है ना, यूथ है ना, उम्र है ना, क्या हुआ उम्र है, वो उम्र ने विकारी बनाया ना, किसने बनाया, काम की अग्नि किसने पैदा की, कामना ने। तो ऐसे क्या है कि अंदर फिर नहीं, मेरी बात किसी ने नहीं मानी, वो कामना है, गुस्सा आ जाएगा, अभिमान आएगा, अभी अभी मेरी बात मान, काम विकार या कामना नहीं पूरी हुई, गुस्सा आएगा जरूर, क्रोध आएगा, या किसी और की तरफ किसी का आकर्षण अंदर हुआ तो बहुत झगड़ा हो जाएगा, है नहीं? तो क्रोध अग्नि, विकार भी अग्नि है, और उस अग्नि को खत्म करने के लिए योग जल तो है, ज्ञान जल तो है, पर योग अग्नि है। वो जितनी जितनी मेरी योग अग्नि पक्की होगी, वो मेरी विकार की अग्नि खत्म होगी, शीतल हो जाएगी। भट्टी इसलिए रखी है कि मैं वो शीतला स्वरूप बन जाऊं, ज्ञान इसलिए मिला है कि स्वच्छ बन जाऊं, शुद्ध स्वरूप में स्थित हूं। फिर आता है, समय बता रहा है कि मुझे खत्म करना है, फिर आया अहंकार। अहंकार किसमें समाया है, मेरे अंडर सब कुछ होवे, मेरे कंट्रोल में रहे, मैं इंचार्ज हूं ना सेंटर का, मैं बड़ी दीदी तो मैं हूं ना, वो मैं का जो है माया वहम दूसरे में पैदा हुआ, विश्वास कम हो गया, सब मेरे अंदर में रहे तो आकाश में अहम समाया है, ऊंचा मेरा नाम हो भी, मैं ऊंची होके रहूं। तो ये बेहद में मैं, बेहद में मेरा हो, हद में नहीं, पर सेवा बेहद की करे, परंतु मेरा नाम शान बेहद में होवे, तो आकाश क्या है, सारे तत्व आकाश के अंदर है। इसलिए परमात्मा कहता है मेरा घर तो आकाश से पार है, कोई भी तत्व में मेरा पर नहीं प्रभाव डालता, मैं आकाश तत्व के पार ब्रह्म लोक का वासी हूं। हे आत्मा तू रियलाइज कर, तेरे को फिर वो वापस वर्चू चाहिए तो ब्रह्म लोक वासी बन जा। तू निराकार स्वरूप आत्मा है, तू शांत स्वरूप आत्मा है, तू पवित्र स्वरूप आत्मा है, तू दिव्य स्वरूप आत्मा है, तो मुझे आत्मा का जो चमकता सितारा है, मेरा भाग्य जाग जावे, बाबा ने मुझे अपना बनाया है तो वह मेरा भाग्य किस्मत जाग जावे, तो किस्मत किस्मत पर लग तकीर, तकदीर पर लकीर क्यों लग गई, किस्मत बिगड़ क्यों गई, बनती बनती किस्मत बिगड़ गई, किस्मत में नहीं था। बाबा कहता कि किस्मत में नहीं है तो स्वर्ग में नहीं आता है, तकदीर में नहीं है तो नहीं देव देवता नहीं बनता है, तो किस्मत मत पर चल रहे हो, मन मत पर चल रहे हो, पर मत पर चल रहे हो, समाज की मत पर चल रहे हो, या श्री मत पर चल रहे हो, तो भगवान किस लिए आए हैं, सतगुरु बन के श्री मत देने के लिए, इसलिए सोल कॉन्शियस बनने के लिए, बनाने के लिए टीचर बन करके सारे कर्मों की गुह्य गति को समझाते हैं, सारे चक्कर का राज समझाते हैं, गिरे क्यों, चढ़ना कैसे है, वो फिर श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। कर्म श्रेष्ठ किए बगैर तो शरीर का कर्म तो है, पर आत्मा ने अपना कर्म किया कि आत्मा सोई रही, आत्मा का कर्म एक्टिव होवे तो सोते सोते भी योग लगता रहेगा, स्वप्न में भी सेवा करेंगे, साक्षात्कार कराएंगे, तो मन बुद्धि और संस्कार कितने एक्टिव हुए हैं, वो वर्चुअल जो मेरे ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता आनंद और सत्यता, ये रियलाइजेशन हो कि वो जो कितने एक्टिव हुए हैं, और जो भगवान ने संपत्ति दी है और शक्तियां दी हैं, वो मैं कितना यूज करती हूँ, दे तो दी है पर बैंक में डिपॉजिट कर दिए, और किस लिए डिपॉजिट किए, ब्याज मिलेगा, परंतु ये ब्याज जो है ये इतने नुकसानकारी है, धोखा देने वाला है, विकारों को अंदर समा के रख दिया, गुणों को नहीं यूज किया, तो गुण स्वरूप स्वरूप बन जावे, समर्पण भाव आ जावे, जब निरहंकारी होंगे, अहंकार खत्म होगा, तो स्वमान में स्थित होते अभिमान खत्म हो जाता है और बाबा की श्रीमत से में निर्माणता आ जाती है कि उसकी मत से काम कर रहे हैं, कर्म का बंधन नहीं बनता। फिर कर्म करने में सफलता होती है, न्यारापन रहता है तो खुशी रहती है, नहीं तो इच्छा होती है मान शान की। तो निराकारी बन के रहे, निर्विकारी बन के रहे, पर निरहंकारी बन के रहे। करण करावन हार करा रहे तो बोरे मेरे को ये कितना सारे दिन में मैंने वो शिक्षा कितनी धारण करके कर्म में लाई है। दर्पण अर्पण अपने आप को कितना किया है जो दर्पण बन जाऊं। समर्पण तो जीवन में कर दिया, मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई, ब्रह्मा कुमार बन गया, अर्पण कर दिया अपने आप को, पर दर्पण बनाऊं, सचमुच चेतन दर्पण बनाऊं। दर्पण की विशेषता क्या है? दर्पण दर्शन कराता है कमी का, पर गुस्सा नहीं करता कि तेरे दाग पर यहां पर दाग लगा है। तो बाबा रोज हमको दर्शन कराता है पर गुस्सा नहीं करता। दर्पण पर आप सुंदर हो तो भी आकर्षण नहीं है दर्पण को, आप सुंदर नहीं हो तो भी आपसे नफरत नहीं है। चुपचाप दर्शन करा करके आप रियलाइज कराता है, चेहरा साफ कर लो। तो मैं दर्पण बनी हूं, दर्पण बनाऊं जो मैं प्रेरणा मूर्त बनूं बाबा मम्मा की तरह। दादियों को देख करके ये दर्पण महसूस मिला हुआ ना, बाबा को बड़े भाइयों को देख के दर्पण मिले ना, तो दर्पण पर कभी भी आग नहीं लगता, चाहे वो सुंदर हो आकर्षित नहीं होता और चाहे वो खराब हो गुस्सा नहीं करता, दिखा के प्रेरणा देता है ठीक कर लो। तो अपने रियलाइजेशन के मैंने जीवन प्रभु अर्पण किया है, भले समर्पण सेरेमनी मना ली है पर समर्पण हुई तो ऑटोमेटिकली जब ये है मैंने तो पुरानापन भी समर्पण हो जाएगा। तो देह का तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, समाज का बंधन, प्रकृति का बंधन, गवर्नमेंट का बंधन, राजा का बंधन, कोई बंधन नहीं रहेगा। मेरे पास ही बाबा राज सत्ता भी दे देगा, धर्म सत्ता भी दे देगा, कोई बंधन नहीं रहेगा। बाबा स्वतंत्र बनाने आया है। शिव पिता को याद करो, मुक्ति धाम में जाना है और फिर देवता बनना है तो श्रेष्ठ कर्म करो। तो आदि का गीत भी रियलाइजेशन का है और ट्रैफिक कंट्रोल का गीत भी रियलाइजेशन का है। वो ही अगर जीवन में धारण करे तो लिबरेशन है ही है, सेल्वेशन है ही है। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब जो बाबा के गुण और शक्तियां हैं वो मेरा संस्कार कहाँ तक बना है, और मेरी अपनी जो बाबा ने अनादि स्वरूप में आत्मा को गुण दिए हैं वो व्यवहार में कहाँ तक लाए। व्यवहार में नहीं लाया तो संस्कार नहीं बनता, नहीं तो अनकॉन्शियस हूं, या कॉन्शियस हूं तो संभाल के रखा हुआ है, यूज नहीं करता हूं। माइंड बैग जो है वो लेजी हो गया है, इंटेलेक्ट बड़ी एक्टिव हो गई है पर माइंड लेजी हो गया, इजी लेते हो जाएगा। वो बने का गाह 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 गे गे गे, बहुत सारी बाबा की मुरलियां, हर एक मुरली में इशारा जरूर होता है। तो रियलाइजेशन बाबा की मुरलियां ही हमारे लिए दर्पण है, बाबा की मुरलियां ही हमारा भोजन है, बाबा की मुरलियां ही हमारा आधार है, क्योंकि बाबा का संबंध पक्का रहता है बाबा के ज्ञान और योग से। सेवा उसी से अपनी पहले बैलेंस रहता है लाइफ में, अपनी सेवा पहले, दूसरे की सेवा बाद में। लाइट जगेगी तब अंधेरा मिटेगा ना, दीपक जगा ही नहीं तो अंधेरा कैसे मिटाएगी। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स सेल्फ जागृति, अवेयरनेस और रिलेशनशिप अपने ओरिजिनल स्वरूप से और रिलेशनशिप बाबा से, फिर ऑटोमेटिकली हमारा रिलेशन सबके साथ प्रेम युक्त होगा, सम्मान सहित होगा, निर्माणता से होगा, एक जैसा होगा, भेदभाव नहीं होगा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे सतयुग तो स्वराज सत्ता, स्वधर्म सत्ता और राज सत्ता, अब ये दोनों आ गई हमारे में तो सतयुग के राजा बनेंगे ना। तो आत्मा का धर्म, आत्मा के गुण हैं और फिर उसका कर्म उस अनुसार ही राजा बनाता है, अभी फिर राज सतयुग का राज मिलता है। तो मुझे क्या बनना है, क्या करना है, दादी जी के तीन शब्द, दादी जानकी के, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, क्या करना है। अपने आप को रोज दर्पण दिखा के अपने असली स्वरूप को धारण करना है, और धारण कर लिया तो अर्पण करना है। ओम शांति, ओम शांति।